प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे,
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी हम सभी ने एक बहुत सुंदर गीत सुना, हे मेरी आत्मा चल परमात्मा से मिलन करने, और उसी का नाम है योग। जहां एक मधुर मिलन का अनुभव हो, कि जिसको आत्मा तरसती रही कई जन्मों के, परमात्मा से एक मधुर मिलन हो जाए। मनुष्य अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, इसी चाहना के साथ कि ऐसे मधुर मिलन में हम खो जाए जिसका सुख या जिसका आनंद अलौकिक हो, इस दुनिया के हिसाब से न हो, इस दुनिया से एक परे का आनंद है। लेकिन ये अनुभव करने के लिए इस योग की यथार्थ विधि क्या है, क्योंकि जब विधि को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो करना आसान हो जाता है। योग को दूसरे शब्द में हम कहते हैं एक यात्रा, और ये यात्रा मन की यात्रा है। मनुष्य का मन सारा दिन कहां कहां घूमता है, कभी देखो तो किसको याद कर रहा है, कभी देखो तो कोई अति निकट का व्यक्ति अगर विदेश में बैठा हो तो मन वहां भी चला जाता है। कितना समय लगता है कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, और वो मन चला जाता है। कोई घटना को याद करनी हो, 20 साल बीत चुके बचपन में, तो ह्यूमन माइंड के पास इतनी कैपेसिटी है, इट कैन ट्रेवल थ्रू टाइम, 20 साल पीछे चला जाएगा। और वही चीज हम व्यक्त करने लगते हैं, कह रहे 20 साल पहले ऐसा हुआ था, ये हुआ था, और इतना एक्यूरेटली उसका वर्णन करते हैं उस समय हम ये नहीं कहते कि अरे 20 साल बीत गया, कैसे उसको याद करें? पूरी घटना तो क्या, उस समय किसी के साथ बातचीत करने में क्या शब्द कहे गए थे वो भी याद आ जाते हैं। अच्छा, भविष्य की कोई प्लानिंग करनी है तो 5 साल आगे भी चला जाता है। इसलिए कहा कि मनुष्य का मन कितना ट्रैवल करता है, एक जगह बैठे बैठे भी कितना ट्रैवल करता है, यात्रा पर ही होता है। कभी देखो तो लंदन अमेरिका पहुंच गया, कभी देखो तो भूतकाल में चला गया, कभी देखो तो भविष्य में चला गया। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड हैज सो मच ऑफ कैपेसिटी दैट इट कैन ट्रैवल फार एंड वाइड। टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट बिकम अ बैरियर फॉर द ह्यूमन माइंड। समय या स्थान मनुष्य के लिए कोई बंधन नहीं बन सकता है। कोई ये नहीं कहेगा अरे मेरा फलाना व्यक्ति लंदन में रहता है, उसको याद कैसे करूं, इतना हजारों किलोमीटर दूर है। कहेंगे क्या कभी? नहीं। तो योग को भी हम दूसरे शब्द में कहते हैं यात्रा, क्योंकि एक मन की यात्रा है। लेकिन ये मन की यात्रा के 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव जिसको हम कहते हैं इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है। उसके बाद दूसरा पड़ाव है इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, मन को ईश्वर के सानिध्य में ले जाना है। सो इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स। और तीसरा इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। ये 3 पड़ाव है। पहला जो कहा इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा। भीतर की यात्रा हम इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के अनेक बातें हैं, अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहो, अनेक रोल्स हमें बजाने पड़ते हैं। कहीं हमें हम बहन है तो कहीं कोई पत्नी है तो कहीं कोई पति है। हर एक के अपने अपने रोल्स है। कहीं आप डॉक्टर है तो कहीं आप किसी के बेटे हैं या बेटी है। तो एक व्यक्ति के कितने रोल्स है संसार के अंदर, और उन रोल्स में भी व्यक्ति उलझे हुए होते हैं। तो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले हम मन को भीतर ले चलते हैं और स्वयं को आत्मस्थिति में स्थित करना होता है। सोल कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करना पड़ता है, मन को स्थित करना पड़ता है। क्यों? जिस तरह दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति अपने आप को जो समझता है उसी की याद उसको स्वाभाविक आ जाती है। एक व्यक्ति ने अपने आप को डॉक्टर समझा तो कौन याद आएगा? पेशेंट याद आएंगे, उसके लिए उसको रटना नहीं पड़ता है मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। सहज, मान लो कि सैटरडे संडे है, छुट्टी है आपकी, घर में है आप, तो घर में आप अपने आप को डॉक्टर नहीं समझेंगे, है ना? घर में क्या समझेंगे? घर का सदस्य समझेंगे। और इसीलिए जब घर का सदस्य समझते हैं तो जो रोल्स है आपके अलग अलग संबंधों में उसको बजाना आसान हो जाता है। जब आप अपने आप को पिता समझते हो तो कौन याद आता है? बच्चे याद आएंगे, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उनके स्टडीज के बारे में पूछेंगे। जब आप अपने आप को पति समझते हैं तो कौन याद आता है? पत्नी की याद आती है। जब आप अपने आप को बेटा समझते हैं तो कौन याद आता है? माता पिता की याद आती है। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग आप सुबह उठे और आपको हॉस्पिटल जाना है, तैयार होने लगते हैं कि तुरंत आपकी कॉन्शियसनेस में यह आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं। इतनी अंदर से वो मनस्थिति आपकी स्थित हो जाती है, इसलिए कहा रटना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रीति से उस कॉन्शियसनेस में आ जाते और तुरंत सारा प्लानिंग चालू हो जाता है कि आज ये पेशेंट को ऑपरेट करना है, ये पेशेंट का को डिस्चार्ज देना है, आज ये पेशेंट की ये ट्रीटमेंट करनी है, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है। जिस समय आपका ये अंदर प्लानिंग चल रहा है, तैयार भी हो रहे हैं, प्लानिंग भी चल रही है, और उसी वक्त आपकी माँ आकर आपसे कहे, बेटा शाम को जब घर आओ ना तो फलानी चीज बाजार से ले आना, क्या कहेंगे आप? पहले तो यही कहेंगे, अरे आप किसी से मंगा लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर भी उसने कहा नहीं, आप ही लेके आना। आपने हाँ किया, लेकिन शाम को जब घर आते हैं और माँ ने पूछा ले आया, क्या कहेंगे? अरे भूल गया। माँ कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तेरे को कब से लगी? भूलने की बीमारी है क्या? नहीं, ये बात उस वक्त कही गई थी जब आप बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं थे, आप एक डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में थे, इसलिए वो बात अंदर गई ही नहीं, यहां से ही टकराकर वापस गई। तो व्यक्ति जो कॉन्शियसनेस में होता है उसी की याद उसको स्वाभाविक आती है, और वही सारी कनेक्टेड बातें अंदर में चलना शुरू हो जाती है। दूसरे दिन फिर आकर के आपको कहती है, आप तैयार हो रहे, उसी समय कहती है, और उस समय आप एक डॉक्टर के कॉन्शियसनेस में ही होते हैं। लगातार अगर 4-5 दिन तक भी नहीं ले आए, फिर आपको क्या होता है? गुस्सा आता, भाई किसी से मंगा लो ना, अब मेरे पर डिपेंड क्यों होता है? ड्राइवर है, ये है, वो है, वो घर के सारे लोगों का आप मेंशन करने लग जाते हैं कि इनसे मंगाओ, मुझे याद नहीं रहता है ये चीज। भाव यही है, क्योंकि आपको उस वक्त ये बात कही जाती है जब आप बेटे की कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। तो इसीलिए भूलने की बीमारी है ये नहीं कहेंगे। व्यक्ति अपने आप को जो समझता है उसी की याद स्वाभाविक है। आज एक व्यक्ति टीचर है, जब आपको जब अपने को टीचर समझता है तो कौन याद आएगा? स्टूडेंट्स याद आएंगे, आज ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, ये क्लास का यूनिट टेस्ट लेना है, ये क्लास का ये एक्टिविटी करानी है, उसी से कनेक्टेड सारी बातें याद आ जाती है और प्लानिंग शुरू हो जाता है। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक माँ के या पिता के कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो एक टीचर की कॉन्शियसनेस में है। ठीक इसी तरह जब एक पति पति की कॉन्शियसनेस में है तो पत्नी की याद आएगी, जब बेटे की कॉन्शियसनेस में है तो माँ बाप की याद आएगी, जब पिता की कॉन्शियसनेस में है तो बच्चे याद आएंगे, तो जब सोल कॉन्शियस होंगे तो कौन याद आएगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद भी स्वाभाविक आएगी। आज तक हमारी जो शिकायत रही कि भगवान को याद करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज नहीं करते हैं। जब मन को उस स्थिति में आप लाए ही नहीं तो ईश्वर की याद कहां से आएगी? इसलिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये अनुभव है कि भगवान को याद करने बैठते हैं ना, उस समय 10 काम याद आ जाते हैं। अरे ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, ये भी। क्योंकि उस वक्त माइंड इतना फ्री कर दिया आपने, उसको कोई कॉन्शियसनेस स्टेबलाइज नहीं किया, तो कहाँ कहाँ जाता है? अलग अलग कॉन्शियसनेस में जाता है तो वो चीजें याद आती है, अरे ये काम तो भूल गए, अरे ये काम तो रह गया, अरे ये उस मैसेज देना तो भूल गए, है ना? तो एक एक सेकंड में जो कॉन्शियसनेस आती है उसी से रिलेटेड वो बातें याद आने लगती है। दिन भर में तो आप एक कॉन्शियसनेस में जीते हैं इसलिए वो बातें याद नहीं आती है, लेकिन भगवान के सामने आप माइंड को फ्री कर देते हैं तो वो अलग अलग कॉन्शियसनेस में भटकता रहता है, और इसीलिए वो लोग याद आते हैं लेकिन भगवान की याद नहीं आती है। तो बहुत मुश्किल है, कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता है ना? तो सबसे पहले इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, कॉन्शियसली यू स्टेबलाइज योर माइंड इन सोल कॉन्शियस स्टेज, जो आपको आत्मचिंतन कराया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी फिर रटने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध पवित्र हूं, ये रटने की आवश्यकता ही नहीं है। सहजता से उस कॉन्शियसनेस में आप स्टेबलाइज कर देंगे और मन सहजता से ईश्वर के सानिध्य में जाने लगता है। तो जिसको कहा जाए कि कोई फ्लाइट भी उड़ान भरने से पहले रनवे पर उसको दौड़ना पड़ता है तो ये रनवे बन जाता है। एक ट्रेन को भी जाने से पहले प्लेटफॉर्म पर लगाना पड़ता है। ठीक इसी तरह माइंड को भी ये प्लेटफॉर्म कहो या रनवे जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मेडिटेशन संभव ही नहीं है। दूसरा कदम जो कहा, फिर ईश्वर के सानिध्य में मन को ले जाना, उस यात्रा पर ले जाना। और जैसे ही आप अंतर चक्षु से स्वयं को भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, तब सहजता से एक वार्तालाप कहो, उससे कनेक्टेड सारे विचार जो है स्वाभाविक रीति से चलने लगते हैं, फिर मेहनत नहीं लगती है। कई बार फिर भी लोग क्या कहते हैं, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। उसका कारण है श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर ये बात दो बार कही गई है, 9वें अध्याय और 18वें अध्याय में। ये अर्जुन मन मना भव, मन मना भव का मतलब है मन को मुझ में लगाओ, और दूसरी ओर दूसरे अध्याय में कहा हे अर्जुन तुम बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मन और बुद्धि, बुद्धि माना ब्रेन नहीं, ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन मन और बुद्धि जो है, कॉन्शियस जिसको कहते कॉन्शियस, ये आत्मा के सूक्ष्म अंग है। जिस तरह शरीर के ये विभिन्न अंग है, जिसके अपने अपने कार्य है, इसी तरह कोई भी आत्मा जब इस संसार में आती है तो उसके साथ उसके तीन सूक्ष्म ऑर्गन्स भी आते हैं, जिसको कहा जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन उसके साथ ही चलते हैं। मन का कार्य क्या है? सोचने का। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं ये मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। बुद्धि का कार्य क्या है? उन विचारों को विजुअलाइज करना। जैसे कहा कि विचार आया आपको कि आपका फ्रेंड अमेरिका में बैठा है, उसको आपको कॉल करना है। विचार आते ही उसका स्वरूप आपके सामने आ जाता है। तो ये अंतर चक्षु बुद्धि के पास है। बुद्धि देखता है और डिसाइड करता है। चॉइसेस जो है ये बुद्धि करती है। क्या करे, अभी फोन करे, बाद में फोन करे, चलो बाद में ही कर लेंगे, है ना। तो ये चॉइसेस उसके अपने हैं बुद्धि के, और उसके आधार पर डिसीशन लेती है। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, इम्पैक्ट छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है संस्कार। और कोई भी चीज बार बार करने से वो संस्कार दृढ़ होता है, या जिसको आज की दुनिया में कहते हैबिट बन जाती है। तो ये आत्मा के तीन सूक्ष्म अंग है। एक है सोचने की क्रिया जिसका नाम है मन, दूसरा है विजुअलाइजेशन कैपेसिटी, मेकिंग राइट चॉइसेस, और डिसीशन लेने की पावर जिसके पास है, बहुत क्रिशियल ये दूसरा ऑर्गन कार्य करता है, क्योंकि उसी के आधार पर लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है। और उसके बाद कर्म में जब आते हैं तो संस्कार छोड़ देता है। अब जब गीता में कहा पहला तो मन मना भव, और दूसरा कहा बुद्धि का योग मुझ में लगाओ। अब पहले किसको लगाएंगे? मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे? दोनों को लगाना है। पहले के कौन किसको फॉलो करता है? पहले मन को लगाना है, राइट? आप ये समझते हैं, पहले मन को लगाना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात एग्जाम्पल के रूप में देती हूँ। आपके घर में दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। आप छोटे को पढ़ाना चाहते हैं, बेटा ये तेरे को करना है, लेसन करना है, जानते हैं ये थोड़ा वीक है, उसको लगाना जरूरी है, उसको पढ़ाने बैठते। लेकिन बड़े को आप कहते हैं, जो 2 साल ही बड़ा है, उसको आप कहते हैं तू फ्री है, जो जो करना है मर्जी करो। अब वो किसके साथ खेले? तो वो क्या करता है, दरवाजे के पीछे खड़ा हो करके ये छोटे को बॉल बैट दिखाता है। अब ये छोटे का मन लगेगा, पढ़ाई में लगेगा? नहीं लगेगा। वो बार बार लिखता भी है, आप उसको कोई स्पेलिंग देते हो, छोटा है लिखता भी है, आपको बार बार देखेगा आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। और जैसे ही किसी का फोन आया और आप मोबाइल पर बात करने लगे, भागा, चांस मिला उसको भाग गया। जब आपके फोन पर बात पूरी हुई आप देखते, अरे कहाँ गया ये, बुलाओ उसको, चल इधर बैठ, तेरे को पढ़ना है, बैठ पढ़ने के लिए। अब ये बड़ा फिर फ्री हो गया, फिर ये खिड़की के पास खड़े होकर के कुछ और दिखा रहा है उसको, फिर ये भागता है, फिर उसको बुला। हमारा हाल यही है, हमारे ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि, ये दो बच्चे हैं। मन छोटा बच्चा है, बुद्धि बड़ा बच्चा है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य में या ईश्वर में आपको मन को फोकस करना है, लेकिन आप बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं। अब आप फोकस करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मन को लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विचार भी चला रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि फ्री है तो क्या करेगा, देखने की कैपेसिटी है, कभी किसको देखेगा, कभी क्या दिखाएगा, कभी क्या दिखाएगा, कभी आपको माँ का चेहरा ले आएगा, कभी आपके सामने बच्चे का चेहरा ले आएगा, आपका फोकस रहेगा, मन को भी खींच करके ले जाता। फिर आप सोचते हैं, अरे इतनी कोशिश करता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, जैसे दुनिया में कहावत है कि छोटे को अगर पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाओ, वो भी बैठेगा तब वो भी पढ़ेगा, छोटा भी पढ़ेगा, उसको भी कहो बैठ तू भी, दोनों को एक काम में लगाओ ना, एक को फ्री नहीं छोड़ो। ठीक इसी तरह हमारे ये दो बच्चे जो है, मन और बुद्धि, मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं, मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, चिंतन देते हैं, पॉजिटिव चिंतन भी देते हैं, लेकिन बुद्धि फ्री छोड़ा है तो बुद्धि क्या करेगी, बैठे हैं मेडिटेशन करने और याद आता है कबाट के अंदर फलानी चीज रखी है, ऐसा तो नहीं कोई खोल करके देख लिया हो, मुझे अंदर रख दे, कबाट दिखाया कि फौरन वो चीज याद आ गई, मन भाग गया, सोच रहे थे मैं आत्मा हूं, आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, और भाग गया, एकाग्रता नहीं, कहते मेरा मेडिटेशन कभी होने वाला नहीं है, मेडिटेशन कभी होने वाला नहीं। अरे मेडिटेशन करने के लिए पहले बुद्धि को बिठाओ, बुद्धि का योग अगर लगेगा तो मन मना भव होना आसान हो जाएगा। बुद्धि का योग माना विजुलाइज करो, पहले स्वयं को, आत्मा प्रकाश पुंज है उसको विजुलाइज करो, ईश्वर को विजुलाइज करो। जिस तरह व्यक्ति को याद करना आसान है, घंटों याद कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उसको आप विजुअलाइज करते हैं। तो बुद्धि को जोड़ा पहले तो मन के संकल्प अपने आप चलने लगेंगे। इसीलिए पहले विजुअलाइज करो, आप सेल्फ को विजुअलाइज करो, क्योंकि आप जो विजुअलाइज करेंगे और उसी के आधार पर विचार चलेगा, अनुभव न हो ये हो नहीं सकता है। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूं आपको कि मान लो कि आप अभी बहुत अच्छे दिनों में आए हैं, यहां माउंट आबू में, नीचे शांतिवन में भी, लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आओ, बहुत ठंडी होती है, कभी कभी फ्रीजिंग टेम्परेचर चला जाता है, और उसमें अगर माउंट में हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है कभी जीरो, कभी -2, -4, -5 तक भी जाता है, उस समय आप आओ और सुबह उठो और बाथरूम में जाओ और वहां गर्म पानी नहीं आता, और ठंडे पानी की बाल्टी रखी है। आप जाएंगे, नल का खुला नहीं आया, बाहर निकल के आ गए, गूस पिंपल्स हो जाते हैं। आपके रूम में जो पार्टनर है, जिसके साथ रूम शेयर कर रहे हो, उसने कहा क्या हुआ, अरे गर्म पानी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वो बाल्टी रखी भरी है, भरी हुई बाल्टी रात से रखी है, क्या कहेंगे, मरना है क्या, उसमें मरने की क्या बात है, क्या इतना समझ नहीं सकते हैं? बाहर इतना ठंडा है, पानी इतना ठंडा है, बर्फ जैसा, आपने विजुअलाइज कर दिया कि ये बर्फ जैसा पानी अगर मैंने अपने ऊपर डाला तो बुखार चढ़ जाना है, बिस्तर पकड़ लेना है, सारा विजुअलाइज कर देते हैं आप, और इतना फास्ट रैपिड विजुअलाइजेशन होता है कि गूस पिंपल्स निकल आते हैं। अनुभव कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? बुद्धि ने विजुअलाइज किया, मन ने संकल्प चलाया, तुरंत उसका आप प्रैक्टिकल फील करते हैं, उसको अनुभव होता है कि नहीं होता है, अनुभव होता है। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूं, मान लो कि आप किसी फ्रेंड के यहां जाते हैं, आपको रात का भोजन पर उसने बुलाया है, भोजन के बाद आप बातें करते 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 रात को 12 एक बज गए, गए 11 बजे थे, 12 बजे तक तो भोजन चला, बात करते करते एक बजा, एक बजे आपको ख्याल आया, अरे बहुत टाइम हो गया, चलो जाता हूं। फ्रेंड ने कहा, अरे घर जाकर के भी क्या करेगा, और कोई तो है नहीं तेरे घर में, तो आज सब गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, मेरे घर में भी कोई नहीं है, एक काम कर तू यहीं सो जा। आपने कहा नहीं नहीं 10 मिनट का रास्ता है, चला जाऊंगा। फ्रेंड ने कहा, अरे बहुत टाइम हो गया है, लेट नाइट हो गई है, और एकांत का रास्ता है, क्यों जाना चाहिए, तू सो जाना, सवेरे चले जाना। आपने कहा नहीं 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 मैं चला जाता हूं, कुछ नहीं होता है, रोज का रास्ता है। आप निकल गए, जैसे ही उस एकांत के रास्ते में आए, क्या आपको कुछ आवाज सुनाई दी, लगा कुत्ता है बिल्ली होगी, और आगे बढ़ने लगे, थोड़ा फास्ट फास्ट बढ़ने लगे, लगा जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई चलने की आवाज है, और आपके पीछे कोई चलने की आवाज हो, क्या होगा, धीरे धीरे ठंडी के दिन है, पसीना आने लगता है, कौन होगा, कहीं कोई चाकू लेके तो नहीं चल रहा है, अगर चाकू लेके चल रहा है तो क्या होगा मेरे पास में, घड़ी उतार देंगे, ये अंगूठी उतार देंगे, दे देंगे, है अंदर सारा फास्ट, कितना फास्ट माइंड चलने लगता है। जैसे जैसे और फास्ट चलते हैं आप, अचानक आपको लगता है एकदम क्लोज आ गया, और सुस करके ऐसे आगे जैसे कोई चला गया हो, अब लगा कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत लग रहा है, क्या होगा, मुड़े फिर दोस्त के यहां पहुंच गए, ऐसे पसीने में, उसने पूछा क्या हुआ, अरे आज जो मैंने डर का अनुभव किया ना, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं कभी डरता नहीं हूं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आपको पसीने में देख करके, अरे इतने ठंडी के दिन है, इतना पसीना तेरे को आ रहा है, अब ये डर का अनुभव कैसे हुआ, विजुअलाइजेशन, पहले कुत्ता बिल्ली विजुअलाइज किया, माइंड फास्ट चलने लगा, थोड़ा उसके बाद कोई इंसान को विजुअलाइज किया, कोई चोर है, डाकू है, पता नहीं क्या है, मांगेगा ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ये सारा विजुअलाइजेशन। माना मन और बुद्धि कैसे काम करते हैं, और ये मन और बुद्धि जितना एक हो जाते हैं ना, इसी का नाम है एकाग्रता। और वहां अनुभव न हो ये हो नहीं सकता है। ये है मेडिटेशन में तरीका। मेडिटेशन को भी इसी तरह आपको अनुभव करना है। बुद्धि के पास जो कैपेसिटी है विजुअलाइजेशन की, कई लोग मुझे पूछते हैं क्या इसको इमेजिनेशन नहीं कहेंगे, मेडिटेशन इमेजिनेशन नहीं है? नहीं, इमेजिनेशन उसको कहा जाता है जिसका अस्तित्व है ही नहीं और उसके बारे में सोचना, उसको कहते हैं इमेजिनेशन। आप बैठे हैं और आप अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं, और कोई आकर पूछता है क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे मैं अपने माँ के इमेजिनेशन कर रहा था, कहेंगे माँ का अस्तित्व है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन है। ईश्वर का अस्तित्व है और उसके बारे में जब आप सोचते हो तो ये इमेजिनेशन नहीं है, ये विजुअलाइजेशन, ये अंतर है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। लेकिन जब इमेजिनेशन में भी आपको अनुभव होता है तो विजुअलाइजेशन में कैसा अनुभव होगा, होगा या नहीं होगा? इसलिए विजुअलाइज करना है, ईश्वर को याद करना है, और जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं और विचार उसके हिसाब से हम चलाना आरंभ करते, तो ये मेडिटेशन का पहला कदम चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन पहला कदम है। दूसरा कदम जो कहा, इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स। आत्मचिंतन करते करते जब मन और बुद्धि ईश्वर के सानिध्य में जाता है, उसको विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, और जब मन को उस परमात्मा की याद में स्टेबलाइज कर देते हैं, एकाग्र हो जाता है, तब बैटरी चार्ज होने लगती। जो सोल बैटरी हमारी डिस्चार्ज हुई थी, उस सोल बैटरी को हम चार्ज करने लगते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कैसे पता चलता है चार्जिंग हो रही है, कहीं ऐसे तो नहीं हम सोच रहे हैं चार्जिंग हो रही हो रही, होता कुछ नहीं है? व्हाट इज द प्रूफ कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है? दुनिया के अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी आती है, उस बैटरी को आप यूज करो, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है और रिचार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? द सिंपल साइंटिफिक लॉजिक सेज दैट द केमिकल कंपोनेंट्स इन द बैटरी एज यू यूज देम दे गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, और जब संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते, माने बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब उसको चार्जर में रखते हैं तो अपने आप चार्ज नहीं होता है, यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ सोर्स, उसको प्लग इन करना पड़ता है। जो करंट आती है वो दिखाई नहीं देती है, हाथ लगाओ तो पता चलता है, लेकिन वो एक्सटर्नल करंट से वो बैटरी रिचार्ज हो जाती है। और रिचार्ज माना दोस केमिकल कंपोनेंट्स जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए थे वो रिऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और जब कंप्लीट रिऑर्गेनाइज्ड हो जाते माना रिचार्ज हो गई। ठीक इसी तरह आज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कैसे पता चला? अस्त व्यस्तता, डिसऑर्गेनाइजेशन। यहां आप तीन दिन से आए और कुछ सीखा ना सीखा हो, एक शब्द तो जरूर सीख लिया होगा। कौन सा? ओम शांति सीखा, ओम शांति का मतलब समझा। ओम शब्द के अंदर तीन अक्षर है, अ उ म। अ माना आचरण, इसलिए इंग्लिश में भी ए यू एम ओम जब लिखते हैं तो वही यू एम लिखते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्शंस, अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, यू स्टैंड्स फॉर अटरेंस और म माना मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन ये तीन भी ऑर्गेनाइज नहीं है। कितना डिसऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बैटरी डिस्चार्ज है। कभी कभी मन में अच्छे विचार आते हैं लेकिन जब उच्चारण करने जाते हैं, व्यक्त करने जाते हैं, कुछ और ही निकल जाता है। बाद में क्या कहते हैं? आप मेरे शब्दों को नहीं देखना, मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, यही कहते हैं ना। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, यही कहते हैं। क्योंकि आपने समझ लिया कि मेरे मन के भाव कुछ अलग है और मेरी वाणी मेरे शब्द में तालमेल नहीं है, कहीं मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, जो बहुत स्वाभाविक है आज की दुनिया के अंदर। इसलिए ये कहना पड़ता है। कई लोगों को इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं जो सोच रहा हूं मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं मैं कर क्यों नहीं पाता हूं। यानी जब कर्म में आते कुछ और ही हो जाता है, फिर कहते पता नहीं सोचा भी नहीं था कैसे हो गए। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। ये तीन क्रिया में भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सुसंवादिता नहीं है, हार्मनी नहीं है, बिखरे हुए हैं। तीनों की एनर्जीज अलग अलग दिशाओं में चल रही है। इसलिए कभी कभी इंसान को जब गुस्सा आता है ना, उसको दूसरों पर कम आता है, खुद पर ज्यादा आता है। लेकिन खुद पर करना नहीं आता है इसलिए दूसरों पर निकालता है, है ना। ये तो हुई स्थूलता की बात। ये तीन शक्तियों को हार्मोनाइज नहीं कर पा रहा है, उससे जो सूक्ष्म है वो तो और भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। सोचते कुछ और है, महसूस कुछ और कर रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं, परसेप्शन कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, कर्म कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कितना डिसऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेशन आता है इंसान को, क्योंकि ये इनर मैकेनिज्म जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शांति नहीं, स्ट्रेस बना रहता है। ओम शांति जब कहते हैं तो ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है। ओम शांति इज अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागृति। आत्मा को जागृत करने की बात है कि ये इनर मैकेनिज्म को हार्मोनाइज करो। कम से कम ये अ उ म को तो है हार्मोनाइज करो। जागृति का शब्द है। And every time I become aware of it, I understand that I need that power to harmonize my inner mechanisms. आप सोचो, जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल पाते हैं, वही आप कर पाते हैं, तो स्ट्रेस होगा? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो आप सोच रहे हैं वही आप महसूस करते हैं, वही आपका दृष्टिकोण है, वही आपका एटीट्यूड है, वही आपका व्यवहार है, वही आपके वाणी है, वही आपका कर्म है। अगर सब में ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो कितनी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और ये इंसान चाहता है, लेकिन वो पावर कहां से ले? तो मेडिटेशन ये चार्जर है, सोल बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन एकदम नील पर नहीं पहुंच गई, थोड़ी तो है उसमें पावर। अब अपने आप को जब कनेक्ट करते हैं सुप्रीम सोर्स के साथ, तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, शांति दो, ये दो वो दो। अक्सर मनुष्य भगवान के मंदिर में क्या जाकर मांगते हैं? हे प्रभु शक्ति दो। कौन सी शक्ति मांगते हैं? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति, विल पावर चाहिए, है ना? और ये विल पावर क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने इनर मैकेनिज्म को हार्मोनाइज कर सकूं। ये शक्ति मुझे चाहिए। ये शक्ति न होने से मनुष्य जीवन में कितनी कमजोरियां आ गई है। जो वीकनेसेस है हमारी, वो वीकनेसेस डेवलप हो गई है शक्ति न होने कारण। आज कई बार कईयों को गुस्सा आता है, क्या कहते हैं? मेरे में एक ही वीकनेस है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वीकनेस है ना? ये वीकनेस किसकी है? शरीर की या आत्मा की? किसकी वीकनेस है? आत्मा की वीकनेस है, ये शरीर की वीकनेस नहीं है। और ये वीकनेस को भरने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अब ये शक्ति कहां से मिलेगी? भोजन से, विटामिन से, टॉनिक से, किससे मिलेगी? मेडिटेशन के द्वारा कैसे मिलेगी? मांगने से तो मिलेगी नहीं। वी नीड टू कनेक्ट आवर सेल्फ विद द सोर्स। जिस तरह बाहर खड़े हो जाओ धूप में, आप सूर्य से मांगते नहीं हो कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, आप खड़े रहो 10 मिनट, क्या होगा? रोम रोम में गर्माइश भर जाएगी। समुद्र के पास खड़े होकर समुद्र से मांगते नहीं हो कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, आप खड़े रहो मिलेगी अपने आप। रोम रोम के अंदर वो शीतलता भर जाएगी। ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक आप बाहर धूप में खड़े नहीं रहेंगे तब तक आपको गर्माइश मिलेगी नहीं। ठीक इसी तरह जब तक आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, पिन जोड़ना पड़ता है और दो पिन चाहिए, और ये दो पिन कौन सी है? मन और बुद्धि, ये दो पिन लगाना पड़ता है। जब ये दो पिन लगाएंगे तो जो पावर आ रही है वो दिखाई नहीं देंगी। कई लोग क्या सोचते हैं, हमें मेडिटेशन में ये दिखाई दिया, ये कलर दिखाई दिया, वो कलर दिखाई नहीं देता है। दैट इज इमेजिनेशन। मेडिटेशन में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो पावर आ रही है उसको महसूस कर सकते हैं आप। कुछ समय के बाद आप उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं कि आपकी जो अस्त व्यस्तता थी, जो डिसऑर्गेनाइजेशन थी, वो इतनी ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल पा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो महसूस कर पा रहे हैं। जैसे आपके विचार है वैसा आपका एटीट्यूड बनने लगता है। जो दोनों अलग अलग दिशा में था, विचार बहुत अच्छे थे लेकिन मेरा एटीट्यूड, ये मेरा एटीट्यूड है, मैच ही नहीं कर रहा था, वो मैच करने लग जाता है। तो मैच करने लगा माना ऑर्गेनाइजेशन जैसे शुरू हुआ, आप खुद भी फील करेंगे, स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा, और इनर पावर से ये हार्मोनाइज होने लगेगा, तो ये पावर कहां से आई? मेडिटेशन, जो आप खुद भी फील करेंगे और आपके आसपास वाले भी फील करेंगे। लोग भी कहने लगते हैं, जब से इसने मेडिटेशन शुरू किया ना, बड़ा चेंज आ गया है, ये व्यक्ति जैसे बदल गया, पहले जैसे रहा ही नहीं, है कि नहीं? ऐसा बहुत बदलाव आ जाता है। तो ये बदलाव जो आया, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बदलाव जो आया, तो ये पॉजिटिव बदलाव लाने की पावर कहां से आई? ये प्रूफ है कि परमात्मा के साथ का मेडिटेशन से आपको शक्ति मिली है। ये प्रूफ है, क्योंकि नहीं तो आपने कई बार कोशिश किया सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी हुआ, कई बार आपने संयम रखने का प्रयत्न किया, कोई हैबिट है हैबिट छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाता था? फिर आ जाती थी वो हैबिट। कई बार आपने सोचा गुस्सा नहीं करना है मुझे, लेकिन जिस दिन सोचते नहीं करना उस दिन ज्यादा आता है गुस्सा। माना पावर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सेल्फ कंट्रोल आने लगता है, सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है, माना पावर आ रही है। खुद भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, पहले से बहुत अच्छा फील करता, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गए। जो लोग कहते हैं मेडिटेशन से स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो पावर चाहिए होती है आत्मा में, वो जैसे ही पावर आती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, इनर मैकेनिज्म सब हार्मनी में काम करने लगते, तो स्ट्रेस लेवल खत्म होने लगता है। स्ट्रेस इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये हार्मनी में नहीं थी, और आपने किसी को कुछ कह दिया, फिर आपने महसूस किया अरे ये तो गलत हो गया, आगे चल करके रॉन्ग रिजल्ट्स ले आ सकता है ना, तब आपको टेंशन होने लगती है, ये होने की संभावना है, ये विजुअलाइज कर दिया तो स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो पावर आ रही है मेडिटेशन में, माना हम अपने अंदर एक चेंज देखना आरंभ करते हैं, फील करना शुरू करते हैं, रिलैक्सेशन ज्यादा रहती है, काम भले ज्यादा करेंगे, पहले से कार्य ज्यादा करने लगते हैं, और फिर भी स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि अंदर की मैकेनिज्म इतनी ऑर्गेनाइज्ड कार्य कर रही है। इसीलिए या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखेंगे। कई लोग मेडिटेशन के कारण ही 18-19 घंटे भी काम करने के बाद थकावट महसूस नहीं करते। हमारी दादी जी को हमने देखा, कई बार 20 घंटा काम कर लेती थी, कभी स्ट्रेस उनके जीवन में नहीं देखा, और इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना बड़ा कारोबार आप लोग ने भी महसूस किया होगा, कैसे चल रहा है? कोई किसी को डांट नहीं रहा है, कोई ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा, कोई चिल्ला रहा है, और आपके कार्यक्षेत्र पर कितना चिल्लाना पड़ता है आपको, कोई चीज व्यवस्थित करने के लिए भी, और यहाँ कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा, और फिर भी सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? जैसे जादू की तरह हो रहा है। ये है पावर, और ये पावर कौन सी है? सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर है। इसलिए कहा मेडिटेशन में शक्ति प्राप्त हो रही है, उसका प्रूफ है ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, रीचार्ज हो गए, इतनी पावर आ गई, आत्मा की सोल बैटरी रीचार्ज हो गई। कितना मेडिटेशन करना चाहिए, कई लोग पूछते हैं कितना मेडिटेशन करना चाहिए और कब करना चाहिए। आप सभी को सुबह 4 बजे बुलाया गया, कभी शायद उठे नहीं होंगे लाइफ में 4 बजे, या पढ़ाई के समय शायद उठे होंगे। जब से कार्य क्षेत्र पर आए तो बहुत मुश्किल होता है 4 बजे, अनलेस आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है या कोई विशेष कार्य होता है तो आप उठ लेते हैं, है ना, नहीं तो कहाँ उठते हैं। और यहाँ अच्छा लगा कि नहीं 4 बजे उठने का, 3:30 बजे उठने का, मेडिटेशन करने का अच्छा लगा। अच्छा, कितना मेडिटेशन, सुबह का समय अमृत बराबर है, इसलिए इसको अमृत वेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा जाता है। इसके पीछे साइंस क्या है, मैं आपको थोड़ा साइंस बता देती हूँ इसका, कि आपके घर में मानो के बच्चे हैं और बच्चा अगर रात को 9 बजे फूल तोड़ने जाता है, आप क्या कहेंगे बेटे को, बेटा फूल नहीं तोड़ना है, वो कहेगा क्यों नहीं तोड़ू, क्या कहेंगे, पेड़ पौधे सो गए हैं, यही कहते हैं ना उसको, सिंपल भाषा में यही समझाते हैं, पेड़ पौधे सो गए हैं। सो गए का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी साइकिल चेंज कर दी, जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, सूर्यास्त अंधेरा होने पर उसने अपनी साइकिल चेंज कर दी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन लेना चालू करता है, इसलिए उसको कहा सो गए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब होता है उस समय उसकी साइकिल फिर चेंज होती है, वो पेड़ पौधे भी जागृत होते हैं, यानी अपनी साइकिल चेंज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं, और उस समय जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन जो है ना अमृत तुल्य होता है, अमृत तुल्य। इसीलिए जब लोग सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, पैदल अगर चले तो पैदल चलने से यू आर ब्रीदिंग दैट अमृत तुल्य, जो टॉनिक है वो आप ब्रीद कर रहे हैं, जिसके लिए एंशिएंट टाइम्स में कहा गया था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, जो विजडम है वो तभी आती है। लेकिन आज पूरी साइकिल उल्टी हो गई मनुष्य की, इतना एक्सप्लॉइट किया है उसने अपने शरीर को। अगर वो पेड़ पौधे सो जाते हैं और सुबह जागते हैं तो ये शरीर भी तो उसी प्रकृति का बना है, ये भी सोना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सोने नहीं देते उसको, नहीं अभी इट्स टू अर्ली, आपको सिग्नल देता है बॉडी, उबासी आई, 8-9 बजते ही उबासी आना शुरू होती है, सिग्नल देता है वॉन्ट टू स्लीप, मुझे भी सोना है। अरे जैसे ही उबासी आई तो आप क्या करेंगे, अरे ये सुस्ती कैसे आ रही, 1 कप चाय 1 कप कॉफी, हम उसको जगाते नहीं, यू हैव टू बी अवेक। अब 1 कप कॉफी माना और 1 कप चाय का मतलब क्या हुआ, 1 कप चाय माना 3 हंटर लगाना और 1 कप कॉफी माना 6 हंटर लगाना। मन रूपी घोड़ा जो है ना उसको मारना, जैसे घोड़ा अगर चलना चालू करे सुस्त हो जाए उसको दौड़ाना है, आपको चाबुक लगाते कि नहीं, तो 1 कप चाय माना 3 चाबुक लगाना, मन रूपी घोड़े को दौड़ तू, सुस्त कैसे हो रहा है। और फिर क्या कहते, रात में हमें बहुत अच्छा एकाग्रता मिलती है, अरे भाई चाय पियेंगे कॉफी, उसको दौड़ाते रहो तो क्या होगा, एक दिन आएगा कोलैप्स होगा, फिर वो काम नहीं करेगा, या तो इतना दौड़ना चालू करेगा या बंद होने का नाम नहीं लेगा, जो डिप्रेशन वाले, इतना नेगेटिव चिंतन चलता है वो रोक नहीं पा रहे हैं, उस घोड़े को रोक नहीं पा रहे, इसलिए इनसोम्या होने लगता है, क्योंकि दौड़ाते रहो तो क्या होगा, वो फिर चलना ही भूल जाता है, या तो कोलैप्स होने लगता है या फिर दौड़ना चालू कर देता है तो रुकने का नाम नहीं, और इतने नेगेटिव विचार आते हैं जो रात को सोने जाओ तो भी, स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी कईयों को नींद नहीं आती है। ये काम हमने एक्सप्लॉइट किया अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को भी, फिर वो काम कहां से करेगा। इसीलिए अगर बॉडी ने सिग्नल दे दिया, एक उबासी आई तो क्या करो, फिर समझ लो उसका ये सिग्नल, समझ लो और समझ करके उसको रेस्ट दे दो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। एक बच्चा जब रात को पढ़ता है ना तो माँ बाप उसको क्या कहते, बेटा सुबह पढ़ना, रात को जल्दी सो जा, है ना। वो कहता है नहीं मुझे रात को ही लेकिन अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन वो कितनी बार पढ़ेगा तब जाकर के वो चीज बुद्धि में बैठती है, और सुबह में जब वो थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लेता है, प्राणायाम कर लेता है, पैदल कर लेता है, वो अमृत तुल्य ऑक्सीजन अगर ले लिया, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, कम समय के अंदर अधिक चीजें वो उसकी यादाइश पावरफुल, मेमोरी पावर उसका बढ़ जाता है। इसीलिए आप योगियों को देखो कि योगियों के जो मनस्थिति होती है बहुत पावरफुल होती है। शरीर तमोप्रधान प्रकृति का होने कारण उसमें बीमारी आ भी सकती है, लेकिन उनका माइंड इतना पावरफुल होता है और उनके वचन ऐसे होते सिद्ध हो जाते हैं। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी की आयु 104 साल के जब थे तभी भी इतना पावरफुल माइंड था। 102 साल तक तो वो विदेश में भी भ्रमण करते रहे। शरीर कैसे साथ देता था मालूम नहीं, क्योंकि वो शायद मानसिक रूप से अपने आप को बुजुर्ग समझते ही नहीं थे। इसीलिए भावार्थ ये कि किस तरह से हमारे माइंड को पावरफुल करना है, तो सुबह का समय अमृत तुल्य है, वो अमृत तुल्य ऑक्सीजन आप लो, आप देखो अपनी कार्य क्षमता, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको आप कितना बढ़ा सकते, कितना उसको ये कर सकते हैं। इसीलिए सुबह का समय बेस्ट, या शाम का समय, नमः शाम का समय बेस्ट होता है मेडिटेशन के लिए। अच्छा, कितना करना चाहिए? एट अ स्ट्रेच 45 मिनट्स, इसलिए आपको यहां 4 बजे से 4:45 बजे तक, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी है, पढ़ाई में भी इसलिए सब्जेक्ट जो होते हैं स्कूल में 45 मिनट्स, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी कोई भी चीज को याद करने की 45 मिनट, उसके बाद उसको चेंज चाहिए, इसलिए दूसरा सब्जेक्ट आता है स्कूल में भी। एट अ स्ट्रेच 45 मिनट्स या एटलीस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मैंने क्यों कहा, सुबह मिलेगा 20 मिनट्स कि नहीं मिलेगा, थोड़ा रीशफलिंग करना पड़ेगा आपको अपनी दिनचर्या को, जल्दी उठना पड़ेगा, बस इतना है। 20 मिनट्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा ही ये प्रूव्ड है कि एक व्यक्ति अगर गुस्सा करता है, बॉइलिंग टेंपर गुस्सा, 5 मिनट अगर बॉइलिंग टेंपर गुस्सा करे, तो उसके बाद वो गुस्सा करने के बाद वो कितनी देर के बाद अपना माइंड फोकस कर पाता है, कितनी देर के बाद, 2 घंटे के बाद। 5 मिनट का गुस्सा, बॉइलिंग टेंपर एंगर, उसके माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि ही इज नॉट एबल टू फोकस हिज माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। ये मेडिकली प्रूव्ड है। 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है उस गुस्से में, जल जाती। इसलिए कहावत है भारत में कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते, इतना जल जल जाती है वो एनर्जी, जल जाती है कार्य करने की या माइंड की जो फोकस करने की एनर्जी है वो जल जाती है। 2 घंटे तक वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाता। अच्छा, उस 2 घंटे में क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करेगा, 10 लोगों को ढूंढेगा जिसके सामने वो अपना जस्टिफिकेशन देगा, अरे ये रोज ही ऐसा करता है इसलिए आज गुस्सा करना ही पड़ा मुझे। और जब उसको 10 लोग ये मिल जाते कहने वाले, अच्छा किया, उसको पाठ पढ़ाना जरूरी था। जब 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं तब जाके थोड़ी हाश होती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तब जाके थोड़ा कूल डाउन होता है। और अगर 10 में से 1 ने कह दिया ये तुमने ठीक नहीं किया, क्या होता है, फिर फ्लेयर अप हो जाते हैं, है ना, फिर फ्लेयर अप हो जाते हैं, फिर 5 मिनट और बोलते जाएंगे, फिर 2 घंटे की कार्यक्षमता जल गई, फिर और लोगों को ढूंढेंगे, है ना। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्यक्षमता को जला देता है, 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा जिस दिन सुबह सुबह आपको किसी ने गुस्सा दिला और 20 मिनट तक आप गुस्सा करते रहे, उस दिन शाम को आने के बाद क्या कहेंगे, आज कोई काम नहीं हुआ, सारे काम मेरे डिस्टर्ब रहे, है ना, आज का दिन बहुत खराब गया, क्रैप डे उसको कहते हैं, क्रैप डे, बहुत खराब गया, कोई भी काम व्यवस्थित हुआ ही नहीं। तो 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की कार्यक्षमता को जला देता है। तो 20 मिनट का मेडिटेशन 8 घंटे की बैटरी चार्ज कर लेता है। इसलिए कम से कम 20 मिनट सुबह सुबह इसलिए बैटरी चार्ज कर दो आप। उसके बाद दिन भर में ये नहीं कि बातें नहीं आएगी, ये नहीं कि कोई आपके साथ में अयोग्य व्यवहार नहीं करेगा, ये नहीं कि लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, करेंगे, परिस्थिति आएगी, चैलेंजेस भी आएगी, लेकिन बैटरी चार्ज होने से यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट, यू विल बी एबल टू हैंडल योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑल्सो। और इतना अच्छी तरह से आप वो सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, लोग भी कहेंगे कैसे कर दिया आपने, हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो यही सोचते पता नहीं अभी क्या करेगा ये व्यक्ति, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो बैटरी चार्ज करने का इसलिए, तो 20 मिनट कम से कम, एट अ स्ट्रेच 45 मिनट्स, 45 मिनट्स अगर चार्ज कर दिया ना, फिर आप देखो, इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं अंदर से, आप खुद को भी और सिचुएशन को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो गुस्सा करने की जरूरत है क्या। इसलिए कहते मेडिटेशन के बाद इसका गुस्सा बहुत बदल गया, ये व्यक्ति बहुत बदल गया, पहले तो बात बात में गुस्सा आता था, आजकल तो बड़े से बड़ी बात आती है तो भी उसको गुस्सा ही नहीं आता है कि नहीं, ऐसे किसे देखे, देखे बैटरी चार्ज हो गई, ये प्रमाण है कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो सुबह 45 मिनट्स या 20 मिनट्स एटलीस्ट, शाम को 20 मिनट्स, शाम को क्यों करना चाहिए, फिर 20 मिनट्स क्यों करना चाहिए या 45 मिनट्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो सारे दिन में बैटरी यूज हो गई फिर से चार्ज कर लो तो कम से कम नींद अच्छी आएंगी, नहीं तो हैंगओवर चलता रहेगा। तो हैंगओवर ना चले इसीलिए शाम को सोने से पहले फिर 20 मिनट आप मेडिटेशन कर लो, रिलैक्स कर दो, एक अलग कॉन्शियसनेस में आप जब चले जाते हैं तो वो स्वप्न में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, जो दिन भर के कारोबार की बातें चली वो रात को स्वप्न में भी डिस्टर्ब करते हैं आपको, और सुबह उठने पर भी वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। इसलिए रात को फिर से बैटरी चार्ज करके फिर सो जाओ। इतना टाइम मिलेगा अपने लिए कि नहीं मिलेगा। तीसरा जो कहा, तीसरा स्टेप, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। कि जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आपके जो वाइब्रेशंस है वो बाहर प्रवाहित होने लगते हैं, या जिसको हम कहते हैं ऑरा, व्यक्ति के आसपास का ऑरा। हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है जो ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आजकल के कैमरास ऐसे निकले हैं जिस कैमरा से आपको पता चलता है कि कौन से कलर का ऑरा है इंसान के आगे पीछे, और वो कलर कुछ ना कुछ डिपिक्ट करता है। व्यक्ति का नेचर डिपिक्ट करता है कि अगर ये कलर का ऑरा है, माना इसके अंदर ईर्ष्या बहुत है, इसके अंदर जेलसी है, इसके अंदर हेट्रेड है, इसके अंदर गुस्सा है, तो उस अनुसार वो कलर्स, और जितने डार्क कलर्स होते हैं उतना नेगेटिव पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, और जितने लाइट कलर्स होते हैं, जितना व्हाइट होता है उतना वो व्यक्ति शांत प्रिय पवित्र इंसान ये देखा गया है। तो लाइट कलर का ऑरा, तो जब हम मेडिटेशन करते वी आर क्लींजिंग आवर ऑरास, उसको क्लींज करते हैं जो नेगेटिविटी, क्योंकि दिन भर में आप ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां चारों ओर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव विचारों वाले लोग हैं आपके पास आसपास, तो क्या होता है अनोइंगली ऑल्सो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनके जो नेगेटिविटीज है वो एब्जॉर्ब होती है। और अगर आपके डार्क ऑरास होगा ना तो वो नेगेटिविटी को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अगर आपका लाइट ऑरा भी रहेगा तो जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं अगर वो नेगेटिव है तो वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपकी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने से वी आर क्लींजिंग आवर ऑरा, और उसका सरकमफ्रेंस हम बढ़ाते हैं, और जितना उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता है तो आप जब कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक वो ऐसा शील्ड बनने लगता है, बाद में एक ऐसा शील्ड तैयार हो जाता है जिस शील्ड के अंदर कोई नेगेटिव ऑरा या नेगेटिविटी पियर्स नहीं कर सकती है, उसको छेद नहीं सकती है, अंदर आ नहीं सकती है। इसलिए कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, कितना भी गुस्सा लड़ाई झगड़ा वाली चीज हो, तो भी आप शांति से उसको हैंडल कर सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपकी कार्य कुशलता इतनी सुंदर हो जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि कैसे किया, जैसे एक मैजिक महसूस होगा, जादू जैसे हो गया। पहली बात तो जितना आपका पॉजिटिव ऑरा आपका विकसित होगा और आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जाएंगे, वो पियर्स नहीं कर सकते हैं, वो छेद करके आप तक पहुंच नहीं सकता है, तो नेचुरल है आपका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा रहेगा। सिंपल एग्जांपल मैं देती हूं। कई लोग क्या कहते हैं, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। आता है, ये है कि ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है मेरे से सहन नहीं होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब सोचो, थोड़ा एनालाइज करते इस बात को कि किसी भी इंसान ने झूठ क्यों बोला, क्यों बोलता है सामने वाला व्यक्ति झूठ, कब बोलता है, डर, भय। अब भय पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब वो भयभीत है, नेगेटिव ऑरा से संक्रमित है, और उस समय उसके पास इतनी ताकत नहीं है जो आपको फेस कर सके या रियलिटी को फेस कर सके, सच को फेस कर सके। तो ऐसा व्यक्ति जो कमजोर है, नेगेटिव ऑरा वाला है, ये सहारा किसका लेगा, पॉजिटिव का लेगा या नेगेटिव का लेगा? बहुत स्वाभाविक है, नेगेटिव का सहारा पकड़ता है। और इसीलिए झूठ बोलना पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो डर झूठ बुलवाता है, तो उसने तुरंत नेगेटिव का सहारा ले लिया। अब नेगेटिव का सहारा ले लिया और आप वहां पहुंच गए और उसका झूठ आपने पकड़ लिया, जैसे भी समझ लिया कि झूठ बोल रहा है, और आपको गुस्सा आ गया। आपने अपना दिन बहुत अच्छा शुरुआत की, लेकिन आपको इतना गुस्सा आ गया उसका झूठ बोलते ही। अब गुस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव व्यक्ति आपको इमीडिएट नेगेटिव बना सकता है। हु इज पावरफुल? हु इज पावरफुल? ही इज पावरफुल। होना क्या चाहिए? मुझे पावरफुल होना चाहिए कि वो मेरे सामने झूठ बोल ही न सके। अब मानो आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपना ऑरा विकसित करते हैं और आप वहां जाते हैं, और जैसे ही आप गए आपने समझा उसने झूठ बोला, लेकिन क्योंकि आपका ऑरा चार्ज था आपने कुछ नहीं कहा और आप अपने कैबिन में आ गए, अपने ऑफिस में आ गए। अब वो व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद चलेगा, मैंने झूठ तो बोल दिया लेकिन जिस दिन पकड़ा जाऊंगा बहुत मुसीबत हो जाएगी, आज तो चल गया, मुझे बता देना चाहिए, थोड़ा ही गुस्सा करेंगे ना, और क्या करेंगे। अंतर्द्वंद चलेगा आधा घंटा, कम से कम आधा पौना घंटा चलेगा। पौना घंटे के बाद वो इतनी शक्ति इकट्ठी करता है, क्योंकि आपका प्रभाव आपने वहां छोड़ा पॉजिटिव एनर्जी का, तो इसीलिए उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है। और ये अंतर्द्वंद आधा पौना घंटा चलने के बाद हिम्मत इकट्ठी करता है और वो आता है आपके कैबिन में और कहता है, सर एक बात करनी थी। आप कहेंगे, बोलो। और उसने फिर सारी बात विस्तार से बताई, ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, मैंने उस वक्त आपके सामने झूठ बोल दिया क्योंकि मुझे लगा आप बहुत गुस्सा करेंगे। सारी बातें सुनने के बाद स्टिल यू आर एम्पावर्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी जो मेडिटेशन किया है। सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? चलो बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, आगे से ध्यान रखना, आपने गुस्सा किया ही नहीं। अब आपने जब गुस्सा नहीं किया और आपने उसको ये कह दिया, बहुत अच्छा हुआ, आगे से ध्यान रखना, उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। दूसरी बार ये नहीं कि इमीडिएट वो चेंज हो जाएगा, वो सच बोलने लगा, इतनी ताकत उसमें नहीं है। दूसरी बार ऐसी कोई सिचुएशन होगी, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे डर तो है उसके अंदर, कम है पहले से लेकिन है, लेकिन इस बार वो झूठ का सहारा नहीं पकड़ेगा, चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। सारी सिचुएशन को समझने के बाद आप आ जाते हैं, फिर उसके अंदर चलता है द्वंद क्योंकि आपका प्रभाव वहां छूटा है। फिर उसके अंदर द्वंद चलता है, 15-20 मिनट चलता है कि मुझे चुप भी नहीं रहना चाहिए, बता देना चाहिए, सर में तो भी बहुत चेंज आ गया है, हो सकता है गुस्सा नहीं करेंगे मैं सच बताऊं तो। और ये सोचते हुए फिर वो 20 मिनट के बाद आपके पास आता है, सर एक बात करनी थी। आप कहेंगे, बोलो। और उसने सारी बात फिर विस्तार से बता दी, उस समय मैं चुप रहा क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। आप कहेंगे, डरो मत, है ना, हम आपको गुस्सा नहीं करेंगे, कोई चीज व्यवस्थित हो जाएंगी, आपने प्यार से उसको बता दिया। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? और कम होता गया। दिस इज हाउ विथ योर पॉजिटिव एनर्जी यू एम्पावर अदर्स। सो इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स आल्सो। ऑरा क्लेंजिंग है, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, यू एम्पावर देम आल्सो। यू डू नॉट अलाउ दैट नेगेटिविटी टू अफेक्ट यू इंटरनली, और आपकी बैटरी शाम तक भी बहुत अच्छी रहेगी, है ना, और इतनी अच्छे से रहेगी, शाम को फिर उसको चार्जिंग कर दी तो आप देखो दूसरा दिन भी आपका कितना अच्छा जाता है ना। तो इसीलिए कहा ये तीन पड़ाव है मेडिटेशन के। इनिशियल जो सारी बात बताई, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आप एम्पावर्ड होते जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।
Thank you.